समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
Today on World UFO Day, we are exploring the unknown. Are we alone in the universe? Shubhanshu Shukla's journey to space serves as a powerful inspiration for millions of young Indians and generates more curiosity about space and unidentified flying objects.
नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम आज सवेरे में। समय है 7:31 और 2 जुलाई की इस सुबह में अब तक के प्रमुख समाचार और बहुत सी रोचक जानकारी लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। आइए आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का जिसका नाम है आज सवेरे। और आज सवेरे के आज के अंक में मैं हूं निखिल कुमार और मेरे साथ में है नीना एरिकल मैथ्यू। नीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।
Hello Nikhil and a very warm welcome to all our listeners tuned in to Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani network. We bring to you our daily news magazine program Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates as well as some historical information related to this day, that is 2nd of July 2025.
तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सबसे पहले श्रोताओं आपको समाचार सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील तथा नामीबिया की यात्रा पर जाएंगे। वे इस यात्रा के पहले चरण में आज और कल घाना में रहेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर घाना की राजधानी एक्रा पहुंचेंगे, जहां उनका औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति जॉन महामा के साथ जुबली हाउस में उनकी बैठक होगी। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल आपसी सहयोग पर चर्चा करेंगे, जिसमें व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की उम्मीद है। आलोक राय, आकाशवाणी समाचार, एक्रा।
यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी 3 से 4 जुलाई तक त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे, जहां वे वहां के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगालो और प्रधानमंत्री कमला परसाद बिसिसर के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी तीसरे चरण में 4 से 5 जुलाई तक अर्जेंटीना की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति माइली के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच जारी सहयोग की समीक्षा की जाएगी और रक्षा, कृषि, खनन, तेल तथा गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, व्यापार और निवेश सहित प्रमुख क्षेत्रों में बातचीत होगी। चौथे चरण में प्रधानमंत्री 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील की यात्रा करेंगे, जहां वे 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ब्रिक्स नेताओं का 17वां शिखर सम्मेलन रियो दी जेनेरियो में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के अंतिम चरण में 9 जुलाई को नामीबिया का दौरा करेंगे। ये प्रधानमंत्री की नामीबिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति नंदी नदेतवाह के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।
Hindi teachers from Sri Lankan government schools will undergo training in India under a special program at Kendriya Hindi Sansthan, Agra, for the first time, organized by the Swami Vivekanand Cultural Center, Colombo, in collaboration with KHS. This is the first ever training initiative in India for Hindi teachers from government schools in Sri Lanka. Currently, 88 schools across Sri Lanka offer Hindi as a subject, and the teachers were nominated by Sri Lanka Ministry of Education. The training also includes visits to Agra, Delhi, Jaipur, Varanasi, Mathura, Vrindavan and Fatehpur Sikri.
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात वाशिंगटन में अमरीकी रक्षा मंत्रालय मुख्यालय पेंटागन में वहां के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने भारत अमरीका रक्षा संबंधों के रणनीतिक महत्व का उल्लेख करते हुए उन्हें द्विपक्षीय संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बताया। ये बैठक क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के तुरंत बाद हुई। श्री पीट हेक्सेथ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने भारतीय सशस्त्र बलों में अमरीकी रक्षा प्रणालियों के एकीकरण के साथ साथ औद्योगिक सहयोग और सह उत्पादन नेटवर्क के विस्तार पर भी चर्चा की।
अमिड चांस ऑफ बम बम भोले एंड हर हर महादेव, जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ अमरनाथ यात्रा पिलग्रिम्स फ्रॉम द यात्री निवास बेस कैंप इन भगवती नगर अर्ली दिस मॉर्निंग। अ टोटल ऑफ 5,892 पिलग्रिम्स लेफ्ट फॉर वैली ऑफ विच 2,489 शैल परफॉर्म यात्रा वाया बलथल रूट, वेयर एज 3,403 विल फॉलो द लॉन्गर अनंतनाग रूट टू रीच द होली केव। वी हैव अ रिपोर्ट।
The 38-day yatra to the 3,880-meter-high Amarnath Shrine shall formally begin tomorrow via both the routes, the traditional 48-kilometer Nunwan Pahalgam track in Anantnag and the shorter one but steeper 14-kilometer Baltal route in Gandharbal. The pilgrimage will conclude on Shravan Purnima, that is Raksha Bandhan Day, that falls on August 9. The pilgrims are being escorted by a robust security convoy. More than 3,31,000 devotees have already registered for this year's yatra so far. Authorities have implemented a robust security plan with a multi-tiered grid, CCTV surveillance and daily traffic advisories. The security wing of J&K Police has taken charge of the Bhagwati Nagar base camp, while CRPF is managing perimeter security. This is Jagmohan Sharma from Jammu.
और इस बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कल जम्मू और कश्मीर के अधिकारियों के साथ अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सुविधाओं की समीक्षा के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक की। इसमें यात्रा मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के 228 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर खंड के सभी भागों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए अधिकारियों को स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करने और यात्रा की तैयारियों के लिए तत्काल आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उधर कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था सफलतापूर्वक यात्रा पूरी करने के बाद कल गैंगटॉक लौट आया है। ये जत्था कल दोपहर लगभग 12:45 पर पहुंचा। यात्रियों से औपचारिक भेंट के लिए आज शाम को सिक्किम पर्यटन विकास निगम द्वारा एक औपचारिक प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राज्य के अपर मुख्य सचिव सीएस राव ने आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण तीर्थयात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए सभी यात्रियों को बधाई दी।
तेगबीर सिंह, अ 6-year-old बॉय फ्रॉम पंजाब, हैज सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द यंगेस्ट माउंटेनियर टू स्केल माउंट एल्ब्रस। इट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन रशिया एंड यूरोप, स्टैंडिंग एट 5,642 meters. Mount Elbrus is also the 10th most prominent peak in the world. Speaking to our Jalandhar correspondent, Tegbir said that he was determined to scale the mountain and succeeded in doing so. In August 2024, Tegbir became the youngest Asian to scale Mount Kilimanjaro, the highest peak on the African continent.
माउंट एलब्रस रशिया दे विच माउंट एलब्रस दी चढ़ाई बर्फ दे उत्ते सी। ओदे लई भारे बूट पाउणे पए, क्रैम्पॉन्स पाउणे पए, ते इंजैक्टां ते ऑक्सीजन मास्क लाउणा पिआ। रात नूं आपां 1 बजे तुरे, आपां सवेरे पहुंच गए सी, ठंड बहुत सी।
गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में कल साइबर अपराध की रोकथाम के मुद्दे पर चर्चा होगी। इस समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल कर रहे हैं। समिति में साइबर अपराध, परिणाम सुरक्षा और रोकथाम विषय पर आयोजित बैठक में मंत्रालयों तथा संगठनों के विचार सुने जाएंगे। ये सार्वजनिक और निजी बैंकों तथा अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ वित्तीय सेवा विभाग के विचार भी सुनेगी। समिति दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अलावा विदेश मंत्रालय में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ देश की वित्तीय खुफिया इकाई के भी विचार सुने जाएंगे।
The monsoon is fully active in Himachal Pradesh and the recent heavy rainfall, landslides and cloudburst incidents have caused significant loss of life and property. So far, 51 people have died in rain-related incidents, over 100 have been injured and 21 people are still missing. Due to rainfall and landslides, hundreds of roads across the state are blocked and drinking water and power supply have also been affected in several districts. A report.
During the past 48 hours, heavy monsoon rains, landslides and cloud bursts have caused extensive devastation in the state. Mandi district has been the worst affected due to cloud bursts and heavy rains, where 5 people have died and 15 are still missing. NDRF, SDRF and administrative teams are actively engaged in relief and rescue operations. In the district, 24 houses and 12 cow sheds have also been damaged. Across the state, 406 roads are blocked for traffic due to heavy rains and landslides. In addition, 1,515 electricity transformers and 171 water supply schemes have also been affected. The Meteorological Center in Shimla has predicted heavy rainfall in most parts of the state even today. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
In women's T20 cricket, India defeated England by 24 runs in the second of the 5-match series at Bristol last night. Here is more in Sports Roundup.
Putting to bat first, the women in blue posted 181 for 4 in the stipulated 20 overs. For visitors, Amanjot Kaur scored unbeaten 63 runs and 40 balls and was declared player of the match. In reply, the hosts could only manage to score 157. With this win, Indian Neves have taken a 2-0 lead in the 5-match T20I series. In men's cricket, the second test of Anderson Tendulkar Trophy series between India and England will begin at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 3:30 p.m. IST. In tennis, world number 1 Jannik Sinner defeated fellow Italian Luca Nardi in straight sets in the first round of the men's singles at Wimbledon. 24 Grand Slam champion Novak Djokovic began his bid for an 8th Wimbledon title with a 4-set win in the first round clash against Frenchman Alexandre Moulin. In one of the biggest upsets of the Wimbledon Championship so far, French Arthur Rinderknecht defeated third seed Alexander Zverev in a gripping 5-set battle to reach the second round. In the women's singles, world number 2 Coco Gauff suffered a major upset, getting knocked out in the opening round after losing to Diana Yastremska in straight sets. Czechia's Barbora Krejcikova, the defending women's champion, came from behind to beat Filipino star Alexandra Ayala. India will open its campaign today in the men's double first round events. Rohan Bopanna, Yuki Bambri, Sriram Balaji and Ritwik Chaudhary Bolipalli will be in action. Manik Sharma, News Desk.
और नीना अब समय है प्रमुख महानगरों यानी दिल्ली मुंबई कोलकाता बेंगलुरु चेन्नई और हैदराबाद से जुड़ी खबरों को अपने श्रोताओं तक पहुंचाने का तो क्या समाचार है आपके पास
लेट्स मूव टू चेन्नई फर्स्ट तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन हैज रिटन टू द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर टू टेक अप्रोप्रिएट डिप्लोमेटिक स्टेप्स टू सिक्योर द रिलीज ऑफ द इंडियन फिशरमैन एंड देयर फिशिंग वेसल्स व्हिच वर एप्रिहेंडेड बाय द श्रीलंकन अथॉरिटीज इन अ लेटर टू द मिनिस्टर ही सेड दैट 7 फिशरमैन हैड सेट आउट टू सी फ्रॉम रामेश्वरम फिशिंग हार्बर वर एप्रिहेंडेड बाय श्रीलंकन नेवी अलॉन्ग विद देयर मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट यस्टरडे द चीफ मिनिस्टर टोल्ड that this is the second such incident within 2 days and it's been causing severe distress and uncertainty among the fishing community which has only recently resumed operations following the seasonal fishing ban. He noted that already 48 Indian fishermen are in Sri Lankan custody. The Telecom Regulatory Authority of India released the results of the independent drive test conducted in May 2025 covering Chennai city of Tamil Nadu licensed service areas. This assessment is part of TRAI's periodic quality of service audits aimed at evaluating real-time network performance. The tests were carried out using calibrated equipment and standardized protocols under direct supervision of TRAI officials across diverse on-ground environments. Moving on to Hyderabad now, Nikhil. Telangana government, in collaboration with the Japan International Cooperation Agency, will launch Telangana Data Exchange Platform, the first state-led digital public infrastructure for artificial intelligence today. TGDX is aimed at developing cross-domain AI solutions through collaboration between the state startups, industry partners, and research institutions. The platform will enable access to high-quality data data and collaborative tools for AI solutions builders, the Emerging Technologies Wing of the State IT Department said. The AI Ready platform will also utilize the Open Data Telangana platform, which is the central repository of all the data sets of the state government that should be in the public domain.
पहुंचाते हैं अब तक तीन नए आपराधिक कानूनों के कल एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को आजाद भारत का सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि पुराने कानून अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों द्वारा और अंग्रेजों के विचार पर आधारित थे, वहीं नए कानून भारत के लिए भारत द्वारा और भारत के सिद्धांत पर आधारित हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का पुनर्निर्धारण किया है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अपनी परीक्षा नहीं दे सके थे। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह टुटीजा ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 13, 14 और 15 मई को कई विद्यार्थियों की परीक्षा छूट गई थी। विश्वविद्यालय ने इन विद्यार्थियों को एक विशेष अवसर प्रदान किया है ताकि वे अपनी परीक्षा फिर से दे सकें। इसके लिए विद्यार्थियों को एक गूगल फॉर्म भरना होगा जिसे 10 जुलाई तक जमा करना अनिवार्य है। दिल्ली पुलिस ने शालीमार बाग इलाके से 5 ट्रांसजेंडर सहित 7 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार इनके पास से 3 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि इन सभी मोबाइल फोन में भारत में प्रतिबंधित ऐप भी मिला है जिसके जरिए ये लोग बांग्लादेश में बातचीत करते थे। पुलिस ने बताया कि एक निर्वासित बांग्लादेशी नागरिक जिसे भारत में दूसरी बार अवैध रूप से प्रवेश करने के बाद गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कल राजधानी में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार इनके पास से 22 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया गया है। आरोपी आसपास के इलाकों में इन पदार्थों की आपूर्ति करते थे। चलते हैं मुंबई की तरफ। प्रवर्तन निदेशालय ने पालघर जिले में 12 स्थानों पर बड़ी छापेमारी की है। अवैध निर्माण रैकेट पर कार्रवाई करते हुए ईडी की टीमों ने मीरा भाईंदर और वसई विरार क्षेत्रों से जुड़े आर्किटेक्ट तथा नगर निगम के इंजीनियरों के घरों की तलाशी ली। ये छापेमारी नाला सुपारा में 41 अवैध इमारतों की जांच और वसई विरार नगर निगम में टाउन प्लानिंग के पूर्व उप निदेशक YS रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई के बाद की गई है। मुंबई विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए स्नातक प्रवेश में समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। प्रथम वर्ष के डिग्री कोर्स में प्रवेश की समय सीमा अब 10 जुलाई 2025 तक कर दी गई है। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में आया है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश पाने का उचित अवसर मिले। यह विस्तार सभी संबद्ध स्वायत्त और मान्यता प्राप्त कॉलेजों पर लागू होता है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 150 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने वाले यात्रियों को अग्रिम टिकट बुक करने पर 15% किराए में छूट देने की पेशकश की है। यह योजना कल से परिवहन निगम में संबंधित सभी प्रकार की बसों पर लागू हो गई है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने परिवहन निगम के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस निर्णय की घोषणा की। और अब खबर कोलकाता से। पश्चिम बंगाल में टेलीमेडिसिन योजना स्वास्थ्य लाभ ने एक नई उपचार सुविधा शुरू की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस सुविधा से 30% से अधिक मरीज जुड़ चुके हैं। पूरे राज्य में 10,000 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों पर टेली मेडिसिन की सुविधा चलाई जा रही है। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को इनकी सेवाएं मिल रही हैं। तो ये थी महानगरों से जुड़ी हुई अब तक की प्रमुख खबरें। तो अब हम लेते हैं हाल ही मौसम। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। मुंबई में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और मूसलाधार वर्षा होगी। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उधर कोलकाता की हम बात करें तो कोलकाता में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और दिन में एक या दो बार तेज वर्षा और शाम के समय गरज के साथ छींटे पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक जा सकता है। नीना, अन्य महानगरों में आज मौसम कैसा रहने वाला है?
Nikhil. Here is weather report from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Chennai is expected to have a partly cloudy sky with possibility of moderate rain on thunderstorm. The minimum temperature was 37 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum will be around 20 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between minimum of 32 degrees and a maximum of 23 degrees Celsius.
और श्रोताओं, समय हो चला है इतिहास के पन्ने पलटने का और आपको उन प्रमुख घटनाओं के बारे में बताने का जिन्होंने आज के दिन अपनी खास पहचान दर्ज की है। वर्ष के सातवें महीने में हैं हम और 2 जुलाई आज की तिथि है। आपको बता दें कि वर्ष 1698 में आज के दिन ही थॉमस सावेरी ने भाप इंजन का पेटेंट कराया था और वर्ष 1777 में आज के दिन ही अमरीका के वॉर्मोंट शहर में दास प्रथा कानूनी रूप से समाप्त हुई थी।
In 1776, the Continental Congress voted for independence from Great Britain, with only New York abstaining. In 1940, Subhash Chandra Bose was appointed by the British government, but was subsequently arrested for inciting rebellion.
श्रोता, आपको बता दें कि वर्ष 1862 में आज के दिन कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ। वहीं 1827 में इतालवी वैज्ञानिक ग्लेमो मार्कोनी को लंदन में रेडियो का पेटेंट मिला था। वर्ष 1916 में आज के दिन ही भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई।
In 1961, Professor M.S. Thacker, DGCSIR, laid the foundation stone for the wind tunnel complex. In 1962, the first Walmart store named Walmart Discount City opened in Rogers, Arkansas.
वर्ष 1983 में आज का ही दिन था जब स्वदेश में निर्मित परमाणु बिजली केंद्र की पहली इकाई ने मद्रास के निकट कलपक्कम में अपना काम करना शुरू किया था।
In 1972, the Shimla Agreement was signed by Indian Prime Minister Indira Gandhi and Pakistani President Zulfikar Ali Bhutto, aimed to normalize relations between the two countries after the 1971 war. In 1976, Communist North Vietnam declared its unification with Socialist Republic of Vietnam. In 1997, screening of hepatitis C made mandatory all over India. 2002, Steve Fawcett became the first person to circumnavigate the globe by balloon.
और श्रोताओं, आपको बता दें कि वर्ष 2001 में आज के दिन ही फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की पहली फिल्म रिलीज हुई थी और वर्ष 2004 में आज के दिन ही छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और वर्ष 2020 में आज के दिन ही भारतीय रेलवे ने 2 किलोमीटर 800 मीटर लंबी ट्रेन चलाई, जो भारतीय रेल के इतिहास में चलाई गई अब तक की सबसे लंबी रेलगाड़ी है और इस ट्रेन का नाम शेषनाग रखा गया था।
Today is World UFO Day, dear listeners, and it is observed on 2nd July. The day is celebrated in a view to create awareness about existence of UFOs and extraterrestrial beings from outer space. How interesting is that, Nikhil?
Bilkul. बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है ये।
इट आल्सो एनकरेजेस पीपल टू थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन काइंड नॉट बीइंग अलोन इन द यूनिवर्स। द आइडिया होल्ड्स हैबिचुअल कॉन्स्पिरेसिस्ट आइडिएशन। एज ऑन June 24, 1947, अ बिजनेसमैन केनेथ आर्नल्ड क्लेम्ड टू सी अ ग्रुप ऑफ 9 हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स नियर माउंट रेनियर इन वॉशिंगटन व्हाइल फ्लाइंग इन एन एयरप्लेन। अनदर रेनाउंड इंसिडेंट दैट मेड द वर्ल्ड क्यूरियस अबाउट यूएफओज वाज व्हेन अ यूएफओ हैड सपोजिटली क्रैश्ड इन Roswell, New Mexico, on July 2nd, 1947, a witness, William Brazel, discovered unidentifiable scattered pieces on his which were some tin foil, a rather tough paper and sticks.
और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं, याद करते हैं उन महान व्यक्तित्वों को जिनकी आज पुण्यतिथि या फिर जयंती है। तो सबसे पहले श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हम याद कर रहे हैं असित भट्टाचार्य जी को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वे भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। असित भट्टाचार्य प्रारंभ से ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे और क्रांति दल के सदस्य थे। 31 मार्च 1933 को हबीबगंज में एक डकैती हुई जिसमें असित भट्टाचार्य ने महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर मौत की सजा सुनाई गई। 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में इस महान सपूत को फांसी पर लटका दिया गया।
Today we remember Michael de Nostredame on his death anniversary. His name is Latinized as Nostradamus. He was a French astrologer, apothecary, physician and reputed seer who is best known for his book Les Prophéties, a collection of 942 poetic quatrains allegedly predicting future events. In the years since the publication of his Les Prophéties, Nostradamus has attracted many supporters who, along with some of the popular press, credit him for having accurately predicted many major world events.
और आज ही पुण्यतिथि अर्नेस्ट हेमिंग्वे की. वे अमरीकी उपन्यासकार, लघु कहानी लेखक और पत्रकार थे. उनकी आर्थिक और अल्पसंख्यक शैली, जिसे हिम शैल सिद्धांत कहा जाता है, उसका 20वीं शताब्दी की कथाओं पर काफी प्रभाव पड़ा. आपको बता दें कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने 1920 के दशक के मध्य और 1950 के मध्य के बीच अपने अधिकांश कार्यों को पूरा किया और 1954 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था. आज ही जयंती है कालिंदी चरण पाणिग्रही की. वे उड़िया प्रसिद्ध कवि, उपन्यास कार, कहानीकार, नाटककार और निबंधकार थे. अपनी महान कृति मतीरा मनीषा के लिए उनको जाना जाता है और ओडिया साहित्य में योगदान के लिए उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया और साथ ही साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था.
मार्गो रॉबी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे टुडे. शी इज एन ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस एंड फिल्म प्रोड्यूसर. शी हैज रिसीव्ड नॉमिनेशंस फॉर एन एकेडमी अवार्ड एंड 3 बाफ्टा अवार्ड्स इन 2013. शी हैड अ सपोर्टिंग रोल इन रोमांटिक कॉमेडी अबाउट टाइम एंड मेड अ ब्रेकथ्रू लेटर दैट ईयर बाय co-starring in Martin Scorsese's biographical black comedy, The Wolf of Wall Street. Here's an excerpt from the movie.
Brooklyn, across the Verrazano Bridge.
Saturday Night Fever territory.
That's right. Guinea Gulch. We call the Verrazano Bridge the Guinea Gang Plank.
Right. So I presume you're Italian?
On my dad's side, I'm also Dutch, German.
और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हम याद कर रहे हैं मोहम्मद अजीज को. वे भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक थे जिन्होंने मुख्य रूप से बंगाली, ओडिया और हिंदी फिल्मों में गाने गाए थे. 1984 में पहली फिल्म अंबर थी वो जिसमें उन्होंने गीत गाया था. उसके बाद उनकी आवाज का जादू लगातार लोगों पर छाता रहा. Diamante Harper, known professionally as Sweetie, is an American rapper. Her 2017 debut single, I See Girl, received double platinum certification by the Recording Industry Association of America and led her to sign with Warner Records. Enjoy the song, I See Girl.
Can't stop, won't stop, get guap. 10 white toes and them toy flip-flops. Manicures and pedicures, I'm always tip-top. When they say I'm not hot, all these lies need to stop. Cause I'm icy, wifey, haters wanna fight me. Never been the one get RP up on a whitey. Keep my hands clean, got some hitters moving shicey. Ask me if I'm rolling with some Gucci, bitch, I might be.
और श्रोताओं, आज जयंती है आशा लता वाबगांवकर की. वे मराठी और हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी और कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से बड़े पर्दे पर अमिट छाप छोड़ी थी. आपको बता दें कि उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म जंजीर थी जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन की सौतेली माँ का किरदार निभाया था.
Indian actor Ganesh, born on 2nd July, is known for his work in Kannada cinema. Through his career in films and television shows, he has become one of the most popular celebrities and highest paid actors in Kannada cinema. Here's a song from his movie. Jayalalitha is an Indian actor who acted in about 650 films. Here's a song from her movie. अनाना।
और श्रोताओं आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं सुहास एलवाई को, जिनका कि आज जन्मदिन है। वे भारत के जाने माने पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और 2007 बैच के पहले आईएएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पैरालंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया था और उन्होंने मेन्स सिंगल्स SL4 में देश के लिए रजत पदक हासिल किया था। इजाजत दीजिए निखिल और नीना को कार्यक्रम आज सवेरे यही संपन्न करने की।
हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।
नमस्कार।
किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं, शहर एक से गांव एक से